मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, हम एक लंबी श्रृंखला के अंतर्गत एक विषय पर बात कर रहे हैं और वो यह है कि सोचा कैसे जाना चाहिए, विचार कैसे किया जाना चाहिए। अब मैं इसे डिफरेंट डिफरेंट शीर्षक के माध्यम से भी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। खासकर जिस दिन मैं जिस बिंदु पर जोर देना चाहूंगा उसे ही अब मैं अपने शीर्षक के अंतर्गत लूंगा, लेकिन आप मान करके चले कि ये सब कुछ विचार कैसे किया जाना चाहिए इसी के ही अंग होंगे। इसलिए आप यह ना सोचें कि मैंने उसे छोड़ करके अब कुछ नए को पकड़ लिया है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने मुख्य विषय पर आऊं, आइए पहले जो एक दो छोटी छोटी खबरें हैं उन्हें देख लेते हैं। अगर आपने रेडियो न्यूज सुना हो तो प्रधानमंत्री जी ने ई कचरा के निपटान के बारे में बातें कही हैं। इलेक्ट्रॉनिक कचरा, आप देख रहे हैं गैजेट वैजेट क्या क्या दुनिया भर की चीजें अब इकट्ठी होती चली जा रही हैं और यह बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है। तो ई कचरा के बारे में प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा जाना सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे महत्वपूर्ण बना देता है। देखिए, चयन का आधार तो यही सब होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने राष्ट्रपति जी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अगर उद्बोधन सुना हो तो उसमें से फिर कुछ चीजें निकल करके आती हैं और स्पेशली खासकर महिलाओं के मामले में उन्होंने काफी तथ्य सामने रखे। तो एक प्रकार से महिलाओं में जो अब चेतना आ रही है, वे जिन जिन क्षेत्रों में नए नए क्षेत्रों में प्रवेश करके सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं उन सब की ओर ध्यान दिलाया हमारे राष्ट्रपति जी ने। तो सीधी सी बात है कि यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो गया है और वैसे भी जो महिलाओं का जो टॉपिक है वो हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो इम्पॉर्टेंट ही होता है। प्रधानमंत्री जी ने अब इलेक्ट्रॉनिक कचरे की बात कही है तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक कचरे की समस्या क्यों आ रही है और इससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और क्या और कदम उठाए जाने चाहिए, क्या क्या एक्ट बनाए हैं सरकार ने, क्या कुछ ऐसा हुआ है, बस इस पर आप थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए। बहुत ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है। मुश्किल से समझ लीजिए कि जो बातें मैंने कही हैं एक डेढ़ पेज में अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा एक डेढ़ पेज में आएगा और वो भी तब जब आप पॉइंट पॉइंट लिखते चले जाएंगे, बस खत्म हो गई बात। आपको इसका विशेषज्ञ नहीं बनना है। दोस्तों, एक और घटना जो इससे पहले घटी है जिसके बारे में आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा भी होगा, एडिटोरियल कमेंट्स भी आने लगे हैं, आज भी मैं आपको कुछ कमेंट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, वो सिंधु जल समझौते को लेकर है। सिंधु जल समझौता जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सन 1960 में हुआ था, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझौता है। सिंधु नदी, आप जानते हैं अगर आप इतिहास में अभी आपकी तैयारी हो गई होगी तो जो सिंधु है उसे एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लोग थे, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, वो स नहीं बोल पाते थे, स को वो ह कहते थे तो सिंधु हिंदू हो गया और उसी से यहां रहने वाले लोग, सिंधु के आसपास रहने वाले लोग हिंदू कहलाने लगे और जिस देश में रहते हिंदुस्तान कहलाने लगा। उसकी एक भाषा पद्धति के आधार पर व्याख्या की गई है। सिंधु समझौता, भारत ने अभी खासकर एक कमिश्नर जो आयोग के कमिश्नर है उसके माध्यम से पाकिस्तान को नोटिस भेजा है और नोटिस यह भेजा है कि सन 1960 में दोनों देशों के बीच जो यह सिंधु समझौता हुआ था उस पर अब फिर से बातचीत की जानी चाहिए, इसको लेकर के नोटिस भेजा है। इसका मतलब है कि यह कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब हो गया है। तो मैं अभी इस पर बात करने नहीं जा रहा हूं क्योंकि स्थायी टॉपिक है, आपको किताबों में भी इस पर मिल जाएगा, लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, तो बकायदे वहां जाकर के मैं केवल आपको सतर्क कर रहा हूं कि इसके बारे में थोड़ी सी जानकारियां आप ले लें। मेंस में तो मुझे नहीं लगता कि इस पर पूछा जाएगा लेकिन प्री एग्जामिनेशन में हो सकता है कि इस पर प्रश्न पूछ लिया जाए। तो दोस्तों, इसे आप तैयार कर लेंगे। अब मैं अपने मुख्य विषय पर आता हूं और आज मैं आपको एक पॉइंट देना चाह रहा हूं। लिटमस पेपर होता है ना, टेस्टिंग पेपर आप कह लीजिए, लैक्टोमीटर देने जा रहा हूं। लैक्टोमीटर का मतलब है कि जब आप दूध की टेस्टिंग कर रहे होते हैं कि इसमें कितना दूध है कितना पानी है तो आपको लैक्टोमीटर का उपयोग करना पड़ता है ना, तो आप फिर पता लग जाता है कि इसमें कितने प्रतिशत पानी मिलाया हुआ है। ये मैं किस संदर्भ में बात कर रहा हूं, इस संदर्भ में बात कर रहा हूं कि आप पढ़ते हैं, आप लेक्चर सुनते हैं, चाहे आप YouTube के जरिए लेक्चर सुने, चाहे आप ऑनलाइन के जरिए लेक्चर सुने, चाहे आप ऑफलाइन क्लास में बैठकर लेक्चर सुने, मैं सिविल सर्विस प्रिपरेशन के संदर्भ में कह रहा हूं, क्या आप या फिर आप वैसे ही लेक्चर सुनने चले जाएं, किसी विद्वान का लेक्चर सुनने चले जाएं, तो उस लेक्चर की टेस्टिंग क्या है, वो कौन सा लैक्टोमीटर है, जिसके आधार पर आपको यह जानना है कि यह लेक्चर मेरे लिए उपयोगी था या नहीं। मैं टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूं, प्लीज इसे समझें, मैं टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, जब आप किसी किताब से पढ़ रहे होंगे, कोई ऑनलाइन लेक्चर सुन रहे होंगे, मान लीजिए कि आपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, या आप ऑफलाइन क्लास में जा रहे हैं, तो वहां डेफिनेटली ये मान करके चलना चाहिए आपको कि सामान्यतया कि जो लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं वे आपके सिलेबस के अंतर्गत से हैं। तो टॉपिक में तो कोई डाउट नहीं है, उसे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, सुनना ही सुनना है। तो आपका टेस्टिंग करने का तरीका क्या होगा? मैं इंडिविजुअल टेस्टिंग की बात बता रहा हूं, मैं सामूहिक टेस्टिंग की बात नहीं बता रहा हूं। ऐसा इसलिए कि सबकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं, मैं ये मानकर चलता हूं। सभी स्टूडेंट्स की बैकग्राउंड अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने कि बकायदे ग्रेजुएशन में हिस्ट्री ले रखी है, आप पॉलिटिकल साइंस ले रखा था, ज्योग्राफी ले रखा था, तो जब वो इस सब्जेक्ट के लेक्चर से सुनेगा तो उसकी समझ में चीजें आ जाएंगी। बनस्पत उसके जिसने साइंस से बकायदे ग्रेजुएशन किया हुआ है और अब वो जनरल स्टडीज की तैयारी कर रहा है और उसमें वो हिस्ट्री ज्योग्राफी के लेक्चर सुन रहा है। इसीलिए मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, मैं एक्सक्लूसिव की बात कर रहा हूं, मैं जनरल की बात नहीं कर रहा हूं। हां, ये जरूर है कि जो लेक्चर दिए जाते हैं वो एक जनरल को ध्यान में रखकर के ही दिए जाते हैं कि सामान्यतया ये लेक्चर्स सभी की समझ में आ जाएं, राइट? तो आपकी जो टेस्टिंग होगी दोस्तों, वो समझ की ही टेस्टिंग होगी, जिस शब्द का मैंने इस्तेमाल किया कि समझ में आ जाएं। आपको देखना है कि यह लेक्चर आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और याद रखिए कि जब मैं कह रहा हूं कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो मैं भाषा की बात नहीं कर रहा हूं जिसके बारे में बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरी भाषा, मेरा जो मीडियम है वो हिंदी है, मैं हिंदी के लेक्चर सुन रहा हूं, तो लेक्चर तो ऐसा लगेगा कि भाई मुझे समझ में तो आ रहा है ना, जो भाषा बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है, जो वो शब्द कह रहे हैं अब उन शब्दों के अर्थ समझ में आ रहे हैं, मुझे कहीं डिक्शनरी पलटने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मुझे कुछ उटपटांग सा भी नहीं लग रहा है। ये समझ में आना नहीं है, ये तो भाषा समझ में आ रही है। कोई विषय समझ में आए उसके लिए भाषा तो प्रवेश द्वार है। अगर आपको भाषा ही समझ में नहीं आएगी तो विषय कैसे समझ में आएगा? भाषा के माध्यम से हम किसी विषय में प्रवेश करते हैं, है ना, वो एंट्री गेट हमारा होता है। अब हम पहुंचते हैं विषय पर कि वो जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो टॉपिक हमारे अंदर रच बस रहा है या नहीं रहा है। मैं याद करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रटने की बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। यानी कि उस टॉपिक में जो गहराई है, उस टॉपिक में जो संवेदनशीलता है, उस टॉपिक में जो परतें हैं, वो समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, पकड़ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, या ये यूं कह लीजिए कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को कार्य कारण संबंध के आधार पर समझाया गया है कि नहीं गया है। विषय भले ही आर्ट्स का है लेकिन विज्ञान के जैसा उसे पढ़ाया गया है या नहीं गया है, यह आपको देखना है। और मान करके चलिए कि अगर उसे विज्ञान के तरीके से पढ़ाया गया है, कार्य कारण संबंधों को स्थापित करते हुए पढ़ाया गया है, एक एक घटना, एक एक वाक्य के पीछे जो तथ्य छुपे हुए हैं उन तथ्यों को सामने लाने की कोशिश की गई है, तो विषय आपके दिमाग में रच बस जाएगा, वो बैठ जाएगा और तभी वह टॉपिक आपकी समझ में आ सकेगा। किताबों की चीजों को ज्यों का त्यों अगर मैं अपने शब्दों में उतार कर आपके सामने रख दूं, बोर्ड पर लिख करके रख दूं, तो वो समझ में नहीं, मुझे इंटरप्रेट करके उसे आपको बताना है कि देखिए ये चीज ऐसी है और ये इसलिए हुई है और इस कारण हुई है। दुनिया भर की आगे पीछे की बातें, कहानियां, किस्से कहां कहां से ला करके मैं उसे प्रूफ करने की कोशिश करूंगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक उसी तरह से जैसे कि कोई भी प्रोफेसर लेक्चरर्स किसी पोएट्री को एक्सप्लेन करता है। जी हाँ, पोएट्री को एक्सप्लेन करता है। हिंदी की लिखी हुई कविता है, हिंदी में आप पढ़ेंगे, हिंदी तो समझ में आ रही है और हो सकता है कि एक एक शब्द के अर्थ भी समझ में आ रहे हों, लेकिन पता लगा कि कविता में जो बात छिपी हुई है वो समझ में नहीं आ रही है। वो कैसे समझ में आएगी। मुझे लगता है कि एक टीचर के रूप में ये मेरी जिम्मेदारी है उस कविता में कहा क्या जा रहा है यह मैं आपको समझाऊं, और मैं अगर यह आपको नहीं समझा पा रहा हूं तो सीधी सी बात है कि फिर जो मेरा जो लेक्चर है वो आपके किसी काम का नहीं है। तो दोस्तों ये सबसे इम्पॉर्टेंट लैक्टोमीटर है किसी भी लेक्चर के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए, इसे आप याद रखें और किसी भी टॉपिक का मूल्यांकन आप इसी आधार पर प्लीज करें। आपके प्रिपरेशन का कोई संबंध इस बात से नहीं है कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, आपके प्रिपरेशन का बहुत ज्यादा संबंध इससे भी नहीं है कि कितनी सारी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। हाँ, एक स्तरीय किताब जरूर हो। तो दोस्तों आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। हम लोगों की जो ऑफलाइन क्लासेज हैं 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच होने वाली हैं, 15 दिन की ये क्लासेज होती हैं। इसके लिए पुष्पांजलि कुमारी ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है जो धुतौली गांव जिला खगड़िया बिहार की रहने वाली है। तो पुष्पांजलि जी आपकी अकेडमी की मैं पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं महेंद्र चावड़ा जोधपुर से, अंकित तिवारी, श्रुति यादव बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, आदर्श राज, सुनीता सोमरवाल इनका गांव है साथिन जोधपुर राजस्थान से, अविनाश कुमार और लिमानसी कोटा राजस्थान से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।